आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, 8 दिसंबर को पेश होगा अनुपूरक बजट। विधि व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर एक घंटे की होगी विशेष चर्चा। देश के विभिन्न राज्यों से रांची पहुंचे आदिवासी प्रतिनिधियों का मुख्यमंत्री ने किया स्वागत, कहा संस्कृति की रक्षा, शिक्षा की प्रगति और प्रकृति के संतुलन के लिए सरकार प्रतिबद्ध। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे देवघर, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। कल पार्टी के नवनिर्मित कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, रामगढ़ समेत राज्य के 11 जिलों में 7 दिसंबर तक शीतलहर चलने की जताई संभावना, येलो अलर्ट जारी। और गोड्डा में 3 दिवसीय 23वीं राज्य स्तरीय जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू, बालकों की 21 और बालिकाओं की 9 टीमें ले रही हैं हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। 5 कार्य दिवस वाले सत्र के पहले दिन राज्यपाल द्वारा सत्रावधि में जारी अध्यादेशों और एटीआर की विवरणी सदन के पटल पर रखी गई। वहीं शोक प्रस्ताव पेश कर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन को सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कुल 5 कार्य दिवसों का यह सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के दूसरे कार्य दिवस पर यानी 8 दिसंबर को सरकार 11,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन में पेश करेगी। शीतकालीन सत्र के दौरान विधि व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर एक घंटे की विशेष चर्चा होगी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद स्पीकर कक्ष में हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में इसका फैसला लिया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इसके लिए एक घंटा अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया गया है। इस बीच भाजपा विधायक आलोक चौरसिया ने सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सत्र के दौरान विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार समेत अन्य मुद्दों पर विपक्ष सरकार से जवाब तलब करेगा।
समझ सकते हैं कि राज्य में बेरोजगारी, तरीके के भ्रष्टाचार अनेक ऐसे है। सरकार कहती है कि हमारी खजाना खाली हो गया है, तो भाई अब खजाना खाली हो गया तो राज्य का विकास कैसे होगा, लोगों का रोजगार कैसे मिलेगा। इन सभी मुद्दों पर जो हम लोग बराबर बोले हैं उस चीज को हम लोग जरूर बोलने के काम करेंगे। और सरकार का और विपक्ष का जो काम होता है सरकार को बताना कि राज्य में ये कमी है, तमाम कार्य को हम लोग करने के काम करेंगे।
इधर झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा है कि विपक्ष के सभी सवालों के माकूल जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है।
सदन में जब हम लोग जाते हैं, अब विपक्ष जो भी कटाक्ष करता है उसका तो हम लोग माकूल जवाब देंगे। और मंत्री लोगों को हिदायत है कि ये पूरी तैयारी के साथ आए, प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से संतोषप्रद दे, ताकि सदन संतुष्ट होए।
रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विक्रमार्क ने श्री सोरेन को हैदराबाद में आगामी 8-9 दिसंबर को आयोजित होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण प्रदान किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब से थोड़ी देर बाद देवघर पहुंच रहे हैं। आज वे भाजपा के वरीय नेताओं के साथ झारखंड की राजनीति पर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। कल बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद वे नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। उनके स्वागत के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन, सांसद आदित्य साहू समेत अन्य वरीय नेता देवघर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा में सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर निरंजन कुमार ने मुलाकात कर उन्हें सशस्त्र सेना झंडा दिवस का बैज लगाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें सशस्त्र सेना झंडा दिवस की शुभकामनाएं दी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के क्रियाकलापों की आलोचना की है। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में श्री मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है।
मैं सरकार को यही सुझाव दूंगा कि उन सारे विषयों पर ध्यान रखे जो यहाँ की मौलिक बात है। मौलिक बातों पर प्रशासनिक तंत्र का बिल्कुल ध्यान नहीं है, इसलिए एक आम नागरिक अपने आप को अलग थलग पा रहा है। कुछ योजनाएं जरूर प्रारंभ की गई, लेकिन वो योजनाएं ऊपरी सतह पर दिख रही है।
रिजर्व बैंक ने आज नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करके इसे 5.25% कर दिया है। इसके साथ ही स्थायी जमा सुविधा दर 5% पर निर्धारित की जाएगी, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 5.5% पर समायोजित होगी। इस कदम से होम लोन और अन्य कर्ज पर ब्याज दरों में कमी आने की संभावना है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी बहामन टूटी ने बताया कि हाल ही में हुई चोरी की घटनाओं के अनुसंधान के क्रम में इन लोगों को पकड़ने में कामयाबी मिली है।
तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से एक नाबालिग जो व्यक्ति, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनकी निशानदेही पर दो मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद किया गया। जो लोग और इस मामले में संलिप्त हैं, उसके लिए छापेमारी जारी है।
नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो उड़ानों के रद्द होने और देर होने से उत्पन्न हुई अभूतपूर्व स्थिति पर नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष की लगातार निगरानी करने का आदेश दिया है। श्री नायडू ने हवाई अड्डा ऑपरेटरों, एयरलाइंस और हवाई यातायात नियंत्रण के डेटा को संग्रहित किया जा रहा है और सभी एयरलाइन विशेषकर इंडिगो के साथ उन्हें साझा किया जा रहा है। देश भर के सभी हवाई अड्डों पर परिचालन की सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए संसाधन जुटाने और समय पर सक्रिय कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। सिमडेगा जिले में इस वर्ष खरीफ मौसम में धान अधिप्राप्ति के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
सिमडेगा जिले में इस वर्ष खरीफ मौसम में धान अधिप्राप्ति के लिए 16 लैंपस का चयन किया गया है। इनमें अरानी, टेसेरा, पाकरटांड, कुरुसकेला, रैसिया, सिमहातु, गेनमेर, टिनगिना, परबा, कुरडेग, चडरी मुंडा, डूमरडीह, पिड़ियापोच, जोराम, मेरोमडेगा एवं पाइक पारा लैंपस शामिल हैं। उपायुक्त कंचन सिंह ने धान खरीद की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू रूप से संचालित करने का निर्देश दिया है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा।
और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत 11 जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। मौसम केंद्र रांची ने आज बताया कि 6 दिसंबर को रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, चतरा, लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में कहीं कहीं शीतलहर चलेगी। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट 7 दिसंबर की सुबह 8:30 बजे तक के लिए प्रभावी है। रांची के सांसद संजय सेठ के मार्गदर्शन में सांसद खेल महोत्सव के तहत कल से 2 विधानसभा क्षेत्र का फुटबॉल उत्सव प्रारंभ होगा। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से खिजरी विधानसभा क्षेत्र का फुटबॉल महासंगम कल उरमांझी के शेख भिखारी स्टेडियम में होगा। वहीं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का फुटबॉल महासंगम 7 दिसंबर को सिल्ली स्टेडियम में संपन्न होगा। गोड्डा में आज से 3 दिवसीय 23वीं राज्य स्तरीय जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रतियोगिता का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी वैद्यनाथ उरांव ने किया। प्रतियोगिता में राज्य भर से बालकों की 21 और बालिकाओं की 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहले दिन कुल 7 मैच खेले गए। बालिका वर्ग में धनबाद ने पूर्वी सिंहभूम, लातेहार ने पश्चिमी सिंहभूम और गोड्डा ने देवघर को पराजित किया। बालक वर्ग में हजारीबाग ने जामताड़ा, धनबाद ने गुमला, पूर्वी सिंहभूम ने पलामू और बोकारो ने पाकुड़ को पराजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, 8 दिसंबर को पेश होगा अनुपूरक बजट। विधि व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर 1 घंटे की होगी विशेष चर्चा। देश के विभिन्न राज्यों से रांची पहुंचे आदिवासी प्रतिनिधियों का मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। कहा, संस्कृति की रक्षा, शिक्षा की प्रगति और प्रकृति के संतुलन के लिए सरकार प्रतिबद्ध। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे देवघर। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। कल पार्टी के नवनिर्मित कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, रामगढ़ समेत राज्य के 11 जिलों में 7 दिसंबर तक शीतलहर चलने की जताई संभावना। येलो अलर्ट जारी। और गोड्डा में 3 दिवसीय 23वीं राज्य स्तरीय जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू। बालकों की 21 और बालिकाओं की 9 टीमें ले रही हैं हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।